ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति में सर्वसम्मति से हुआ पारित। ब्रिटेन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 13 अरब 8 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता स्वीकार करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। देश के 73 जिलों में इस साल 2,365 लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि। डेंगू के मरीजों को सरकारी अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्च देगी सरकार। और गजा के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में इसराइल के हमले में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ब्रिटेन सरकार से प्राप्त होने वाली करीब 13 अरब 8 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को स्वीकार करने का निर्णय किया। मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने एशियाई विकास बैंक के प्रस्तावित 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर ऋण सहायता स्वीकार करने के संबंध में वार्ता टोली गठित करने का निर्णय किया। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किए। प्रतिनिधि सभा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति ने संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। समिति की आज की बैठक में जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आयन 2071 को संशोधित करने के लिए बने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय किया। समिति की सभापति बिमला सुवेदी ने बताया कि प्रतिनिधि सभा की अब होने वाली बैठक में विधेयक का प्रतिवेदन पेश करने का वातावरण बनाने का सभामुख से पत्र के द्वारा आग्रह किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे। राष्ट्रीय सभा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पौड़ेल ने ये बात कही। ये बताते हुए कि डेंगू और हैजा संक्रमण का जोखिम आने वाले भादो और आश्विन महीने तक रहेगा, उन्होंने सभी से सचेत रहने और सचेतना फैलाने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में आज पार्टी के 7 प्रदेशों में समिति के सभापति ने अपनी अपनी धारणा व्यक्त की। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सानेपा में हुई बैठक में प्रदेश सभापतियों ने केंद्र के हस्तक्षेप करने पर असंतुष्टि जताते हुए प्रदेश समितियों को अधिकार संपन्न बनाने पर जोर दिया। ये जानकारी नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने दी। प्रवक्ता डॉ महत ने बैठक के बाद संचारकर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश समितियों के ऊपर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और प्रदेश सरकार बनाने के दौरान भी संबंधित प्रदेश के संसदीय दल को ही निर्णय लेने का अधिकार देने की बात हुई थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि कृषि मंत्रालय कृषकों का समस्या समाधान करने में केंद्रित रहेगा। आज कृषि विभाग द्वारा ललितपुर में आयोजित विभाग और महातथ के निकाय के 4th त्रैमासिक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी ने कहा किसान लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन करने और किसानों का समस्या समाधान करने का महातथ के निकायों को निर्देश किया। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने केंद्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार क्षेत्र में प्लास्टिक फ्री जोन अभियान की शुरुआत की है। आज वातावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था साथ साथ ही फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्रालय में हुई भेंटघाट के बाद मंत्री ठकुरी ने मानव स्वास्थ्य और वातावरण पर असर करने वाले प्लास्टिक की सामग्री का प्रयोग हटाने के लिए खुद के कार्यकक्ष से प्लास्टिक फ्री जोन अभियान की शुरुआत की। मौके पर मंत्री ठकुरी ने सिंह दरबार के प्रवेश द्वार में प्लास्टिक फ्री जोन संबंधी सचेतनामूलक होर्डिंग बोर्ड रखकर अनुगमन करके अभियान आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा ने बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देल को अपना कार्यभार हस्तांतरण किया है। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा में आज आयोजित समारोह में प्रधान सेनापति शर्मा ने वरिष्ठतम रथी सिग्देल को प्रधान सेनापति का कार्यभार हस्तांतरण किया। सरकार ने ओमान सरकार से काठमांडू में राजदूतावास स्थापना करने का आग्रह किया है। परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल ने बुधवार ओमान के उच्च अधिकारियों से मस्कट में मुलाकात करते हुए ऐसा आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइली बलों ने आज पूरे गजा पट्टी में हवाई हमले किए। इसमें कम से कम 40 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हमास लड़ाकों ने भी इसराइली सैनिकों पर एंटी टैंक रॉकेट और मोर्टार दागे हैं। इस बीच इसराइली सेना ने दक्षिण गजा के खान यूनिस में लोगों के घरों को खाली करने का नया आदेश जारी किया है। आज इसराइल ने यहूदियों और सामरिया ने आतंकवादी हमलों को निर्देशन करने वाले हमास के सीनियर कमांडर नेल साखल के 24 जुलाई के हवाई हमले में मारे जाने की पुष्टि की। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इसराइल के सेंट्रल गजा के अल वुर्ज कैंप पर ताजा इसराइली हवाई हमले में कम से कम 15 लोगों की जान गई है। इसी तरह उसके पास अल नुसरत कैंप पर हमले में 4 लोगों की मौत हुई। घनी आबादी वाले नुसरत और बुरेज इनलेब को इसराइल उन 8 ऐतिहासिक कैंपों में देखता है जहां हमास लड़ाकों की मजबूत पैठ है। इसराइली लड़ाकू विमानों ने गजा सिटी के केंद्र में उत्तर और एक घर पर जोरदार बमबारी की। इसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसी तरह हमले में खान यूनिस में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। इसके बाद गजा सिटी के पूर्व में 2 स्कूलों पर बमबारी में 15 फिलिस्तीनियों की जान गई है और 30 शरणार्थी घायल हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के अनुसार दक्षिणी जापान में भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई जा रही है। जापानी ब्रॉडकास्टर एनएचके वर्ल्ड के अनुसार भूकंप के बाद मियाजाकी, कोची, ओइता, कगोशिमा जैसे इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी भूकंप के संदर्भ में कुछ निर्देशों को जारी किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति में सर्वसम्मति से हुआ पारित। ब्रिटेन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 13.8 अरब रुपए की अनुदान सहायता स्वीकार करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। देश के 73 जिलों में इस साल 2,365 लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि। डेंगू के मरीजों को सरकारी अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्च देगी सरकार। और गजा के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में इसराइल के हमले में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।